गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।
बादशाह को उसके नजूमियों ने बताया कि फुला तारीख इतने बजे एक बिच्छू के डंक के सबब तेरी मौत वाकई हो जाएगी। बादशाह बड़ा घबराया कि क्या कर साहब, लेकिन उसने बड़ी कोशिश की अपनी बचाव की। जब वो वक्त करीब आने लगा तो अपने कपड़े लत्ते जो थे वो सारे मतलब उसने धो धा लिए और सब देख दाख के उसने पहने, और ऐसी जगह पर कि कहीं से बिच्छू आ नहीं सके। अपने घोड़े को खूब गुस्ल दिया, कहीं मतलब बाल की नोक के बराबर कोई बिच्छू हो तो वो भी मर जाए, और बड़ी हिफाजत के साथ वो घोड़े पर सवार हुआ और जाकर वो बीच तालाब में खड़ा हो गया कि बिच्छू तैरना तो जानता नहीं, वो तैर के आ जाएगा, बारिश में वो बरसता नहीं कि ऊपर से आ जाएगा, इसलिए आप बिच्छू तो मेरे पास आ ही नहीं सकता और वक्त गुजर जाएगा। वो बड़े इत्मीनान से ये खड़ा हुआ है पानी में, वो वक्त करीब आता जा रहा है। यकायक घोड़े ने जोर की छींक खाई, जैसे घोड़ा छींका उसके चीख में एक बिच्छू निकला और उसने बादशाह को डस लिया और बादशाह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। तो अल्लाह ताला की कुदरत का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वो मुसब्बिबुल असबाब, वो खालिक असबाब है। जब मौत आ गई, वक्त पूरा हुआ, तो दुनिया की कोई ताकत किसी को नहीं बचा सकी। तो मेरे भाइयों, बजायर तो बिच्छू ने काटा और वो मर गया, और हम बिच्छू से डरे कि बिच्छू काटेगा तो वो दर्द होगा, मारे जाएंगे, मगर असल जो नजाकी सख्तियां जो हैं वो इससे भी खतरनाक है। वो बस में कुचल गया, क्या बेचारे का भेजा निकल आया, वो ट्रेन में कट गया के टुकड़े हो गए। हालांकि भेजा निकलना अगरचे बहुत तकलीफ दे, टुकड़े होना ये भी बहुत तकलीफ दे, लेकिन इनसे ज्यादा तकलीफ तो नजा की है। नजा में जो तकलीफें होती हैं, कैंचियों के काटने से सख्त हैं, हांडियों में उबालने से भी सख्त। बल्कि मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम फरमाते हैं कि मौत का एक झटका तलवार के हजार वार से सख्त। बिस्तर पर बजायर तो बंदा इत्मीनान से मर रहा है, लेकिन इसको जो तकलीफ हो रही है बता नहीं पा रहा, एक हजार वार से भी तलवार के सख्त। तो जिहाद में इतनी तलवारें लगती नहीं है, हजार तलवारें तो लगी नहीं सकती, एक दो वार में ही बाज़ोकात एक ही वार में बंदा शहादत पा लेता है। तो जो मुसलमान है और जिहाद करता है उसके लिए मतलब ये बहुत बड़ी सआदत है कि मौत की सख्तियां जो है, नजा की सख्तियां, ये उसको महसूस नहीं होती। यहाँ तो उस पर भी आती है लेकिन उसको महसूस नहीं, कि शहीद बवक्ते शहादत ऐसे ऐसे नजारे करता है कि उन नजारों में गुम हो जाता है, इसलिए उसको सख्तियां महसूस नहीं और बआसानी उसकी मुकम हो जाती। ये मशहूर वाकया है कि सैयदना यूसुफ अला नबीना वालसलाम के बारे में जुलेखा को इसकी सहेलियों ने तंज की है कि क्या तुम इस गुलाम पर आशिक हो गई हो, ये वो है। तो कनीजों ने, सहेलियों ने और कनीजों ने देखा ही नहीं था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बस क्या तुम एक मतलब गुलाम पर, क्योंकि गुलाम बन के वो दिखे थे वहां और कैदी भी रहे थे, एक कैदी और गुलाम पर तुम इतनी फरिश्ता और शेफ्ता हो। तो जुलेखा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जब देखो तब बताना। तो फिर एक इज्तिमा उसने मुनक़िद किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर्दे में छुपा दिया और सबके हाथ में छुरी और लेब दे दिया, एक रिवायत के मुताबिक गोश्त की बोटी दे दी। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें तशरीफ फरमा, हुए औरतों ने देखा और सेब भी काटा, तो सबके सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवे में इस कदर मुनहमिक हुई कि इनकी उंगलियां कट गई, इनको पता भी नहीं चला। जब होश आया तो पता चला कि सेब के बदले उंगलियां कट गई और खून जारी, उंगलियां कट गई एहसास नहीं। या आज भी डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन करते हैं, तकलीफ तो होती है, कटता है जिसमें, एहसास नहीं होता दर्द का, बेहोशी की वजह। तो इसी तरह मतलब ये कि शहीद जो है वो जलवे देखता है, तकलीफ हो रही है, रू निकल रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन उसका एहसास जो है वो नहीं होता। और नजा की सख्तियां जो हैं इसमें मोमिन को अजर भी मिलता है, सवाब भी मिलता है, उसके गुनाह धुलते हैं, ये भी होता है। तो बहरहाल कई भाइयों, अब चूंकि हम पैदा हुए तो इसलिए अब ये सारे मामलात से हमें गुजरना होगा, दुनियावी परेशानियों से भी गुजरना होगा। लोग बोलते हैं ये परेशानी है, वो परेशानी है, इन परेशानियों से तो गुजरना ही पड़ेगा, पैदा भी होगा दुनिया में तो है ही परेशानियां, और जनाबे वाला बीमार भी होना पड़ेगा, बार बार बीमार होना पड़ता है। एक बीमारी ऐसी आती है कि मरना भी पड़ेगा, या हादसे में मरना पड़ेगा, या गोली खाकर मरना पड़ेगा, या किसी तरह भी असबाब होंगे और मरना पड़ेगा। और नजा की सख्तियां वो भी अपनी जगह पर है, किसी को कम किसी को ज्यादा, भी इससे भी तो पाला पड़ना तकरीबन पाला पड़ता ही है। अब इस सूरत में बंदा क्या करे, कहा जाए? इसमें सूरत यही है कि अल्लाह ताला से लौ लगाए, उसके महबूब की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करे। इन सख्तियों में आसानियों का ये जरिया है कि अपने लिए मतलब इस तरह आसानियां पैदा करें कि सरकार के तस्वुर में गुम रहा करें कि ऐन मुमकिन है कि मौत के वक्त आका का दीदार हो। और ये एक सूरत है कि सख्तियां तो होंगी लेकिन फिर महसूस नहीं होंगी, ये ऐन मुमकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाएंगे। एक हदीस शरीफ भी है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो बेदारी में भी देखेगा, जब नजा के वक्त ज्यारत करेगा तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी इंशाअल्लाह। और उनके आशिक की तो क्या शान, सरे बानी इन्हें रहमत की अदादाई है। सरे बानी मन सिरा में सर के करीब, सरे बानी इन्हें रहमत की अदादाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कजा आई है। तो ये एक सूरत है कि महबूब का जलवा मौत के वक्त नजर आए और बात बन जाए। तो इसमें तो जैसा जिंदगी में उसके हालात होंगे वो होगा मौत के वक्त। जैसे एक डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब आखिरी वक्त में बार बार रीडर डाइजेस्ट तलब कर रहे थे, रीडर डाइजेस्ट ना उसकी बीवी ने मतलब बयान दिया, बार बार वो रीडर डाइजेस्ट मांग रहे थे। इसकी वजह थी कि रीडर डाइजेस्ट के वो बहुत ज्यादा मतलब यानी कि आशिक थे। और ये डाइजेस्टें जितनी भी होती हैं तो आपको भी पता होगा उनमें क्या नहीं होता। तो इंग्लिश डाइजेस्ट का लेकिन रीडर डाइजेस्ट, तो जो रीडर डाइजेस्ट का शौकीन था वो मौत के वक्त रीडर डाइजेस्ट मांगेगा क्या कलमा और कैसा कलमा। एक वकील साहब थे गालिबन, वो जमीनों के वकील थे, प्रॉपर्टीज के, तो उसकी मौत का वक्त आया तो वो मतलब यानी कि अपने किसी केस नंबर जो था तो 4 नंबर का क्या हुआ, 10 नंबर का क्या हुआ, 4 नंबर का क्या हुआ, वो मेरा सुफा नंबर 10 का क्या हुआ, इस तरह बोलते बोलते उन्होंने जान दे दी। ये तो ये ताजा वाकयात हैं जो महाराष्ट्र वगैरह के होते हैं, और किताबों में भी शरद सुदूर में इस तरह के मुकद्दद वाकयात हैं। एक शख्स की मौत हो रही थी, वो शराबी था। अगर आप शराब नऊज़ु बिल्लाह आपने उनको पीता तो वो भी देख रहे कि कलमा भला नसीब होगा या नहीं, कि मरते वक्त वो आखिर तक यही कहता रहा, तू भी पी मुझे भी पिला, तू भी पी मुझे भी पिला, मर गया ये कहते कहते। तो इस तरह मतलब मौत के वक्त ये मामलात होते हैं। अब जो फिल्मों का शौकीन है और अपने पर्स वगैरह में बटुए में दुकानों में फिल्म एक्टरों का जो मतलब पोज वगैरह रखते हैं फोटो रखते हैं, उनके लिए भी बड़ी शामत का इम्कान है कि आशिक तो अपने महबूब का जलवा देखे, और जो फिल्म एक्टरों का आशिक होगा ऐन मुमकिन है कि उसके सामने मौत के वक्त फिल्म के सीन ही घूम रहे और वो एक्टर ही घूम रहे और उसकी एक्शनें हों उसके सामने, और इस तरह वो एक्टर की ख्वारी में बर्बाद हो जाए और अपनी जान दे बैठे, ऐन मुमकिन है। इस तरह के वाकयात बहुत मिलते हैं कि जिससे मोहब्बत करता है वो उसके सामने आते हैं। और बाज़ औक़ात मतलब और भी अजीब मामलात हो जाते हैं। एक शख्स की मौत हो रही थी तो उसको लोगों ने तलखीन की कलमा पढ़ने की, तलखीन की सूरत ये होती है कि इसको कहा ना जाए कि कलमा पढ़, हो सकता है इनकार कर दे। क्योंकि ये वाकया मैंने बयान किया है उधर गालिबन लाहौर में, एक शख्स की मौत हो रही थी तो उसको कहा गया कलमा पढ़, तो पहली बार दूसरी बार तो उसने जवाब नहीं दिया, फिर जब उसको कहा गया कलमा पढ़ तो उसने कलमे को गालियां निकालनी शुरू कर दी और फिर वो मर गया ऐसी हालत। इसलिए कहा ना जाए, क्योंकि वो भी बदबख्त बेनमाजी होगा, दाढ़ी मुंडा होगा और तरह तरह की बुराइयां करता होगा फिल्म ड्रामे जो आजकल मतलब हम लोग करते हैं। ये बुराइयां खुदा की कसम अगर बंदा गौर करे तो तबाही तबाही और तबाही है बिल्कुल, यानी कि एक भला मानस और खलीक इंसान और कामिल मुसलमान फी जमाना अगर नायाब ना सही कम याब जरूर है कि अखलाक भी उसके अच्छे हों, इबादात भी अच्छी हो, आदत भी अच्छी, बदनिगाही से भी बचता हो, दिल भी उसका साफ हो, बदगुमानी से तकबर से रियाकारी हर तरह से वो पाक साफ हो और नेक बंदा हो। हकीकी मानोगे तो हम हर एक को नेक बोलते हैं, बहुत भाई बड़ा उसूली बाउसूल आदमी है, बड़ा नेक और शरीफ आदमी है, ये नमाज भी पढ़ता है और जुम्मे की तो पढ़ता है, यानी ये बदबख्त बेनमाजी है और शरीफ और नेक आदमी है। देखो नमाज छोड़ना भी आदमी को नेक रखता है। इस दौर में बेनमाजी से बढ़कर बदनसीब और बदकिस्मत और बदबख्त होना, बदबख्त के माने बदनसीब, तो गाली नहीं, तो बेनमाजी से बढ़कर कोई बदनसीब आपने देखा हो तो मुझे बता दें, मुसलमानों में बदनसीब बेनमाजी से बढ़कर कौन हो सकता है? और गालिबन 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते होंगे, और जो 5% नमाज अगर पढ़ते भी हैं उनमें भी हजारों में इक्का दुक्का होगा जिसको नमाज दुरुस्त पढ़ना आती होगी। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि झांकनी की होलनाकियों और सख्तियों से अब छुटकारे की एक ही सूरत है कि उसमें कुछ हमारे लिए भलाई हो जाए कि हम अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें और सुन्नतों की पाबंदी शुरू कर दें, अपने वजूद को सुन्नतों के सांचे में ढालें और अपनी आखिरत की तैयारी में मगन हों। काश मरते वक्त हम भी महबूब का जलवा देखें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना करे हम घर में ड्रामे देखते रहें, गाने बाजे सुनते रहें और हमारे मरने के वक्त गुलूकारा मनहूस अपना चेहरा लाकर खड़ी हो जाए, मरते वक्त कोई फिल्म एक्टर दाढ़ी मुंडा हमारे किराने आकर खड़ा हुआ आंखें निकाल कर घूर रहा और हम उसके सामने हमारी रुख कम। खुदा रखा। तो मैं अर्ज करने लगा था कि शरों सुदूर में एक शख्स को मरते वक्त कलमा तलकीन किया जा रहा था, तो उसने कहा कि मुझे ये दो शख्स नजर आ रहे हैं, ये कलेमा नहीं पढ़ने दे रहे। उन नजा के आदम में वो बोला कि मुझे ये दो शख्स कलेमा नहीं पढ़ने दे रहे। ये कहते हैं कि हम तुझे कलेमा नहीं पढ़ने देंगे इसलिए कि तू ऐसे लोगों की सोहबत में बैठता था जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हुमा को गालियां निकालते थे, तुझे इसकी वो नसीहत करते थे, हम तुझे कलेमा नहीं पढ़ने देंगे। इससे पता चला सोहबत भी कैसी होनी चाहिए कि अगर हम ऐसे बद मजहबों की सोहबत में रहेंगे जो नऊज़ु बिल्लाह सहाबा इकराम को गालियां निकालते हैं, या माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुयूब तलाश करते हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं, उनकी अजमत व शान में बातें बनाते हैं, तो अगर ऐसों की सोहबत में बैठो तो फिर अपना अंजाम खुद सोच लो। तो ऐसों से अपने तो दूर ही से वैदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, इसमें समझ जाओ कि ऐसों के अगर छेड़ेंगे आप तो आपका मूड उल्टा खराब होगा, दिल खराब होगा। अभी आपके जमीर पर है कि अगला आपके अजीम रहनुमा की तोहीन करें और आप फिर बर्दाश्त करके हफ्ते में गुजर जाएं। तो बात सुननी है तो शान अजमत की, बात करनी है तो शान अजमत की, महबूब की हम शान सुनते हैं तो इसलिए मतलब महबूब के गुण गाते जाओ, उनकी अजमत और शान के डंके बजाते जाओ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।